स्वामी श्री प्रेमपुरी अध्यात्म विद्या भवन के पवित्र परिसर में प्रवचन के सत्र में हम लोग भगवान वेदव्यास द्वारा विरचित महाभारत के अंतर्भूत उद्योग पर्व और उस उद्योग पर्व में स्थित सनत सुजात उपपर्व, जिसमें सनत कुमार और धृतराष्ट्र का संवाद है। इस संवाद के ऊपर भगवान शंकराचार्य ने भाष्य लिखे हैं। गीता, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद 10 या 11 उपनिषद पे तो लिखा ही है, और सबसे प्रारंभ में विष्णु सहस्त्र नाम पे भी लिखा था, और तीसरा ये सनत सुजातीय पर लिखा है। तो महाभारत के अंतर्भूत 3 ऐसे प्रसंग हैं जिन प्रसंगों पर भगवान शंकराचार्य जी ने भाष्य लिखे हैं। पहला विष्णु सहस्त्र नाम, दूसरा श्रीमद् भगवत गीता, और तीसरा सनत सुजातीय, इस पे भाष्य लिखा है। और सनत सुजातीय अपने आप में दो टूक बोलने वाला ग्रंथ है। इसके उपदेश देने वाले सनत कुमार हैं, अश्रोता धृतराष्ट्र हैं। तो वहां पहले अध्याय में मौन के महात्म को सुना, तो मौन के विषय में धृतराष्ट्र के मन में एक जिज्ञासा हुई, किस प्रयोजन के लिए मौन रखा जाता है, मौन होता है। तो बताया परमानंद की प्राप्ति ही वास्तव मौन है। दो प्रकार का मौन है, एक बांगी का मौन है, दूसरा मन का मौन है। तो मन मौन हो जाए, मन निर्विकल्प हो जाए, मन में किसी भी प्रकार का कोई विकल्प न उठे, उस मौन की बात मैं कर रहा हूं। बांगी के मौन की बात नहीं कर रहा हूं। यदि बांगी के मौन से ही कल्याण हो गया होता तो जितने गूंगे लोग हैं ना, वो पहले मुक्त हो गए होते। स्वामी अखंडानंद जी महाराज बोलते थे, एक छटाक की उनका एक शब्द था, क्योंकि उधर छटाक बोलते हैं बनारस साइड में, छटाक मन जानते ना, कितने ग्राम का होता छटाक, लगभग 50 ग्राम का पता है अंदाज, हाँ लगभग 50 ग्राम का ही एक छटाक बोलते हैं। तो नहीं, एक छटाक 50 ग्राम का होता ना, नहीं जानती, चलो जो भी होता है, एक छटाक 50 ग्राम का उधर बोलते हैं। तो 50 ग्राम की जीभ हिलाई नहीं जाती है, और 5 किलो का सर हिलाते रहते हो। कई लोग मौन रहते हैं ना, तो दिन भर मौन रह करके 32 पन्ने की कॉपी भर जाती है, कितने पन्ने की, 32 पन्ने की कॉपी लिख देते हैं दिन भर में, और सर हिलाते रहते हैं संकेत करके। तो भाई ऐसे मौन से फायदा क्या है बताओ। मौन माने अंदर से किसी भी प्रकार की कोई वृत्ति उठे ही न कुछ अच्छा का भाव, ऐसे भी न करो एक काम कर लूं, ये भी न अच्छा का भाव है न बुरे का भाव आए, एक मौन भाव साधना का उत्कृष्ट स्थिति है। जहां गीता जी के 18वें अध्याय का एक बहुत प्यारा सा श्लोक है, आप लोग पढ़े भी होंगे, न द्वेष्टि अकुशलम कर्म, न द्वेष्टि कुशलम कर्म, तो अलग अलग करोगे, न द्वेष्टि अकुशलम कर्म, कुशले नानुसज्जते, ध्यान देना, अकुशले अकुशलम कर्म न द्वेष्टि, अकुशल कर्म से जो द्वेष न करे, अकुशल कर्म से राग भी न होए। बड़ा अच्छा हुआ, फैंटास्टिक है, क्या कमाल कर दिया, ये भी न आवे। अरे क्या है, तो ऐसे आदमी है, घटिया काम करता है, मुंह भी न बने। कुशल अकुशल भाव से जो ऊपर उठ जाए वह कौन है? त्यागी। जो यहां से थोड़ा उठ गया है, संसार के व्यवहारों से थोड़ा उठ गया, त्यागी। सत्व समाविष्ट है, जो सत्व ने अपने स्वरूप में स्थित है। अपने स्वरूप में कौन स्थित है और इस संसार के तुच्छ व्यवहारों से कौन ऊपर उठा हुआ है? कहा मेधावी। कौन है? समझदारी उठा है। ना समझ को तो शराब में भी सुख दिखता है, ना समझ को तो व्यभिचार में भी आनंद दिखता है। इन जो समझदार व्यक्ति है ना, इन सब तुच्छ व्यवहारों से वह ऊपर उठा हुआ है, उसको सुख क्यों नहीं दिखता है? का छिन्न संशय है, उसके भीतर का जो संशय था वह सारा संशय समाप्त हो गया है। इसलिए ऐसी स्थिति का नाम है मौन भाव। अभी तो हमें बड़ा अच्छा लगता है, योगी आदित्यनाथ सीएम बन गया, खुश रहते हैं, देखो खुश चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। लेकिन कभी आप कल्पना करना, पहले लोग राजपाट छोड़ करके संन्यास लेते थे। गौतम बुद्ध क्या किए थे? बड़े बड़े राजा महाराजा भी, राजा याति क्या किए थे, ऋषभदेव क्या किए थे, राजपाट छोड़ कर क्या लेते थे? संन्यास लेते थे। आज क्या हो गया है? संन्यास राजपाट में आ रहा है। तो अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है? देखा जाए तो एक तत्वतः विचार करो, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है? अरे बहुत बड़ा सोचने का विषय है। पहले घर में लोग खाना बनाते थे और शौच कहां जाते थे, और आज खाना कहां खाते हैं? बाहर है, शौच कहां जाते हैं? घर। ध्यान देना, पहले नाचने वालों को बाहर से बुलाते थे, याद आना है? नाचने वालों को कहां से बुलाते थे? बाहर से बुलाते थे। और खाना पकाने वाले कौन होते थे? घर के ही बहू बेटियां सब मिलकर के खाना नहीं पकाती थी। आज क्या हो गया है? खाना पकाने वालों को बाहर से बुलाते हैं और नाचने वाले घर वाले हो गए हैं। कितना परिवर्तन होता जा रहा है, आप सोचो, कल्पना करो। पहले लोग छोटे बड़ों से डरते थे, चाहे बाप से बेटा डरता हो, सास से बहू डरती है। आज स्थिति उल्टा हो गया है, बच्चों से बाप डरता है। बड़ा मुश्किल है। पहले बाप कहता तू घर से निकल जा, अब बेटा कहता है आप डांटोगे मैं घर से छोड़ चला जाऊंगा। नहीं बेटा, न जाना प्लीज, न जाना। हमें न निंदा न स्तुति, न अच्छा न बुरा, दोनों से क्या हो जाना? ऊपर उठ जाना। इसी भाव को श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंध में भी सुखदेव जी ने कहा, पर स्वभाव कर्माणि न प्रशंसेत न गर्हेत। दूसरे के स्वभाव की और दूसरे की कर्म की, पर स्वभाव कर्माणि, तो पर स्वभाव और पर कर्माणि, दूसरे का क्या स्वभाव है और दूसरे का क्या कर्म है। न प्रशंसेत, न प्रशंसा करना चाहिए और न निंदा करना चाहिए। क्यों? एकात्मकम विश्वम पश्यन, सारे संसार को एक रूप देखता हुआ। कौन सा रूप देखें? माया पुरुषेण। या सारा संसार को माया रूप देख लो, जादू का खेल देख लो, स्वप्न की सृष्टि देख लो, तो स्वप्न की सृष्टि में बताओ कौन से काम की प्रशंसा करोगे, आज मैंने बहुत बढ़िया सपना देखा, अथवा किसी ने घटिया सपना देखा, तो क्या वह हे हो जाएगा क्या? तो या तो समझना सारा संसार क्या है, माया का खेल है, अथवा पुरुषेंगवा सारे संसार में एक परमात्मा की सत्ता किसी का दूसरी कोई सत्ता है ही नहीं, वही मछली बना है, वही कच्छप बना है, वही पक्षी बना है, वही राम बना है, वही मारने वाला भी बना है, वही मरने वाला भी बना है, उसकी सत्ता किसी का दूसरी कोई सत्ता है ही नहीं। जो कोई भी व्यक्ति इस भाव में स्थित हो जाता है, उस भाव का नाम है मौन भाव। कौन सा भाव है अब बताओ, कहां हम लोग स्थिति है, लगता है कहां है? छोटी छोटी बात में तो हम उछल देते हैं, बहुत अच्छा है। लेकिन इस मौन भाव की प्राप्ति, मौन से ही मौन भाव की प्राप्ति कैसे होती है प्रश्न पूछा, तो मौन माने इंद्रियों का मौन करो, इंद्रियों माने पांचों इंद्रियों का विषयों से क्या करना, धीरे धीरे उपराम करना। तो उपराम करोगे तो शुरू शुरू में मन की वृत्ति उधर तो जाएगी, शुरू शुरू में जाएगी, लेकिन बाद में ऐसी वृत्ति हो जाएगी कि मन को बाहर भेजोगे भी ना तो जाएगा नहीं। जैसे प्रबोध सुधाकर ग्रंथ आपने पढ़ा होगा, उसमें एक उदाहरण मैंने बहुत दिया कि एक शेर है, मनमानी संसार के विषयों में जंगल में घूमता है, नहीं घूमता, शेर है कहां बिहार करता है, जंगल में, और मनमानी आचरण करता, और उस शेर को कभी जेल में बंद कर दो, पिंजरे में बंद कर दो, तो जेल शांति से बैठेगा, उछल कूद करेगा, उछल कूद करेगा, खूब उछल कूद करेगा, चोट भी खाएगा, नीचे गिरेगा भी, घायल भी होगा, हो सकता दो चार रात उसको नींद भी न आवे, बाद में यदि उसको वहीं खाना मिल जाए और तीन चार साल दस साल तक शेर को कैद किए रहो, तो बाद में शेर को डंडे मार करके भी दरवाजा खोल के भी बाहर निकालो कि भाग जाएगा, बताओ भाई। अब कह सकता कोई आदमी, हमने शेर नहीं पाला है, हमें क्या मालूम महाराज, लेकिन तोता तो पाले हो नहीं पाले हो बताओ, पक्षी तो पाले नहीं पाले हो। पक्षी को हम लोग पहले एक पिंजरे में बंद कर देते थे, जब नया नया पक्षी बंद करो ना तो खूब फड़फड़ाता था, पंखे तोड़ ताड़ लेता था, और हाथ लगाओ तो जंक वो टोंक भी मारता था, और जब लंबे समय तक उस तोते को पिंजरे में रहने की आदत हो जाती है, खाना मिल जाता है, तो पिंजरे का दरवाजा खोल दो और उसको बाहर निकालो तो भी बाहर भागने का नाम है, और कहीं गया भी तो चुपचाप फिर से वापस से आगे बैठ जाता है, क्योंकि अब जंगल में उसको पूरी सुरक्षा दिखती है। इसी प्रकार से मेरा मन रूपी जो बाघ है ना, संसार में खूब घूमता है, संसार रूपी जंगल में खूब विहार कर रहा है, घूम रहा है, इस मन को एक झटके में रोकना हो ना बहुत ही कठिन है, लेकिन हर दरवाजे को बंद कर देना, दरवाजे कौन है, वही मौनेन, इंद्रियों का उपरामता ही मौन है, पहला मौन ये साधन है, इंद्रियों की उपरामता ही वास्तव में क्या है, मौन है। तो मन दरवाजा खटखटाएगा आंख के पास, देख ले बहुत बढ़िया फिल्म लगी है दंगल, देख ले वो बहुत बढ़िया सीन है, वहां प्रदर्शनी लगी है प्रदर्शनी, लेकिन रोकना। कान कहेगा बहुत बड़ा संगीत का प्रोग्राम हो रहा है, चल घूमा। स्पर्श कहेगी यहां दरवाजा नाक होगा, चल बढ़िया ठंडा ठंडा कूल कूल वातावरण है। हर मन हर इंद्रियों के दरवाजे पर, जैसे कभी हो ना किसी पिंजरे में किसी व्यक्ति को बंद कर दो तो कभी इधर वाला दरवाजा खटखटाएगा, कभी उधर वाला दरवाजा खटखटाएगा, कभी इधर वाला दरवाजा खटखटाएगा, किसी भी निमित्त से, किसी भी रास्ते से, किसी भी खिड़की से वह बाहर निकलना चाहेगा नहीं चाहेगा। कभी आप लोग बंद हुए नहीं, बंद हुए हो कोई बंद कर दे। माताएं जब बच्चे शैतानी करते हैं तो माताएं दरवाजा बंद कर देती थी दंड के स्वरूप। तो कभी खिड़की दरवाजा खड़े, कभी खिड़की छांकता, कभी कहीं से कि किसी भी निमित्त से हम बाहर निकले। और जब उसको बाहर कोई रास्ता नहीं मिलता है तो बच्चा क्या करता है? रोता है, रो करके थक जाता है, थक करके सो जाता है, बच्चा सो जाता है। उसी प्रकार से मेरा मन रूपी जो बंदर है, या मन रूपी जो बच्चा है, या मन रूपी जो बाघ है, ये संसार में इंद्रिय रूपी दरवाजों को खूब खटखटाता है कि कभी विषय की तरफ, कभी रूप की तरफ, ओ कभी रस की तरफ, कभी शब्द की तरफ, कभी गंध की तरफ, किसी भी दरवाजे से उसको एक बार बाहर निकलने का मौका। और एक बार निकला तो सब में घूम ले आएगा। एक खिड़की खुली तो धीरे धीरे, एक विकार आते ही धीरे धीरे सारे विकार आ जाते हैं। तो मन तो रास्ता खोजता है, लेकिन मौन के द्वारा, मतलब इंद्रियों के संयम के द्वारा, इंद्रिय संयम रूपी मौन के द्वारा उस मन को बाहर निकलने मत देना लंबे समय तक। तो एक दिन ऐसी स्थिति आएगी कि मन शांत होकर के भीतर ही बैठ जाएगा। और जब मन भीतर बैठ गया ना, तो इस मन को ना भीतर से रस मिलना शुरू हो जाता है। और जब एक बार उसको भीतर का रस मिल गया तो इस मन को तो बोध होगा कि यहां तो पूरी सुरक्षा भी है, अब पूरा आनंद भी है, अब बाहर सुरक्षा भी नहीं है, अब उतना आनंद भी नहीं है। तो उस मन को बाहर भगाना भी चाहोगे डंडे ले लेकर के, जा ये काम कर ला, जा इस विषय में घूम ला, फिर भी वह मन बाहर अब विषयों में जाएगा नहीं। तो इंद्रिय उपरामता रूपी मौन के द्वारा व्यक्ति कौन सा निर्विकल्प समाधि रूपी मौन को प्राप्त कर लेता है। साधन समझ में आ रहा है भाई? मौनेन विद्वान युतयाति मौनम, मौन के द्वारा मौन को विद्वान कैसे प्राप्त करता है? तो कौन से मौन के द्वारा? इंद्रियों के उपरामता रूपी मौन के द्वारा मन उपराम, मन की उपरामता को प्राप्त कर लेता है। लेकिन मन की उपरामता को प्राप्त करने के लिए पहला साधन क्या है? इंद्रियों की उपरामता चाहिए, नहीं तो सीधा मन को एक बहाना चाहिए। मैं बार बार कहता हूं, मन इतना कपटी है ना। अरे आप लोग कभी सोचो, बच्चों को बंद किया होगा दरवाजा, यहां पता नहीं, हम लोग तो छोटे थे तो बंद हो हुए हैं। बच्चे बहाने, मम्मी बाथरूम लगी है जल्दी दरवाजा खोलो, कभी हम किसी बहाने वह बच्चा दरवाजा खुलवा करके बाहर निकलना, यही तो होता ना। मन भी कोई ना कोई प्रपंच रचेगा, इसके बहाने मेरे को बाहर निकाल दो। उसको बाहर निकलने का कोई ना कोई क्या चाहिए? बहाना चाहिए। और एक बार बाहर निकल गया तो फिर जल्दी पकड़ में आने वाला है ही नहीं। इसलिए बड़ी सावधानी से इंद्रिय संयम रूपी मौन के द्वारा मन निग्रह रूपी मौन को प्राप्त करो। इंद्रिय संयम साधन है और मन का निग्रह क्या है? साध्य है, उस मौन को प्राप्त करो। और कथम मुने मौनम इह आचरंती, मुनि लोग इस संसार में मौन का आचरण कैसे करते हैं? तो गीता जी का उपदेश सुन लेना, अभ्यासेन च वैराग्येण, थोड़ा अभ्यास करो। अभ्यास के द्वारा ही मौन हो सकता है। जब तक अभ्यास नहीं करोगे ना, क्योंकि जन्म जन्मांतर का, हम ही लोग, सच बता रहा हूं, कभी कभी होता था न्यूज सुनने की आदत हो गई, टीवी देखने की आदत हो गई। आजकल आदत किसकी हो गई है? इंटरनेट मोबाइल की आदत हो गई है। अब 10 मिनट आप कहीं ट्रेन बैठना, आदमी कोई बैठना, बंद किया फिर शुरू। तो अभ्यास से हम फंसे नहीं फंसे। अब उस विषय को हटाने के लिए अभी टीवी कमरे जाना शुरू कर दूंगा, मेरा भी अभ्यास बन जाएगा। 4 दिन जाऊंगा, 5वें दिन से अभ्यास शुरू हो जाएगा। फिर उस सीरियल को, उस भाव को देखे बिना मन क्या रहेगा? अशांत। अभ्यास करो। अब उस कमरे में हमने अजमाया, अखबार पढ़ता हूं, 10 दिन अखबार पढ़ लो, 11वें दिन इंतजार हो जाता है, अखबार आया नहीं, आया नहीं, आया नहीं। फिर मांगूंगा दिनकर, अखबार लाया नहीं भाई, पहुंचा दे। अरे ऊपर महाराज जी ले गए हैं, अरे वो मांग के ले आना भाई। सच बता रहा हूं, बेचैनी हो जाती है, जबकि हमें अखबार से क्या लेना देना है बताओ। राजनीति हमारा विषय नहीं है, लेकिन फिर भी न जानते हुए भी, हम जानते हैं उसमें काम की कोई चीज है ही नहीं, फिर भी हमारे मन में चलो आपको तो अपने काम की चीज भी कोई मिल सकती है। एक पेज शेयर का आता है, एक पेज स्पोर्ट्स का आता है, एक पेज हीरो हीरोइन का आता है, एक पेज विदेश का न्यूज आता है, यही तो आता है और क्या आता है, चार पांच पेज यही भरे रहते हैं। हम जानते हैं मेरे काम का चीज नहीं है, लेकिन फिर भी मन उसके बिना अशांत हो जाता है। अभी बताया ना गांव के क्षेत्र में गया, आपसे बता रहा था आजमगढ़ इलाहाबाद उधर गांव में गया, न वहां अखबार था, न टीवी थी, न लाइट थी, न कुछ जो था, तो सब था न अखबार पढ़ा, न टीवी थी, और न वहां नेट था। यही बताओ, रिलायंस जियो का वहां नेट भी नहीं था, तो नेट भी 15 दिन नहीं चलाया, एक तरह से पूरा अभ्यास ही छूट गया। तो इसको कहते हैं अभ्यास। अभ्यास 15 दिन 20 दिन विषयों में जाने का न करो ना, तो धीरे धीरे उस विषय की याद भी 2-4 दिन तो बेचैन करता रहा। मोबाइल फोन भी नहीं आते थे, क्योंकि MTNL का भी नेट नहीं मिलता था, न फोन आते थे, न कोई नेट था, न कोई दुनिया से संपर्क था, जबकि उसके बिना 10 बार अभी न्यूज देख लेते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो ये अभ्यास भी चाहिए विषयों से हटने का। जब तक विषयों से हटने का अभ्यास नहीं होगा ना, तब तक हम उस मौन में स्थिति हो नहीं सकते हैं। यहां बैठेंगे मन हमारा कहां घूमता रहेगा, यूपी में कौन बन रहा चीफ मिनिस्टर, सच बता रहा हूं, कहीं ना कहीं भटकता रहेगा मन। तो क्या होना चाहिए, अभ्यासेन, और दूसरा वैराग्य का बल होना चाहिए। वैराग्य भी जीवन में लाओ, जिस मन जिस विषय की तरफ तू जा रहा है उस विषय में कितनी मात्रा में सुख है, और उस विषय में जाकर के आज तक क्या कभी कोई व्यक्ति सुखी हुआ। बार बार उस मन को वहां डंडे मारना, और डंडे मार करके ही वहां प्रभु सुधाकर में ही बताया, विषय इंद्रिय संयोगे ने, विषयों का इंद्रियों के साथ संयोग हो जाने से अल्प मात्रा में सुख होता है, लेकिन अनंत काल तक दुख की प्राप्ति होती है। तो रे मन तुम स्वयं विचार करो कि तुच्छ सुख के लिए अनंत दुख लेना अच्छा है, अथवा तुच्छ सुख का त्याग करके अनंत सुख की प्राप्ति करना उचित है। तू सौदेबाजी भी करता है तो सौदेबाजी कर ले। तो इस तरह से मुनि लोग विचार के द्वारा, संयम के द्वारा, त्याग अथवा वैराग के द्वारा उस मन को मारते हैं। इसका एक उदाहरण आपको समझा दूं, फिर आपको समझ में आ जाएगा रहस्य की बातें। आप लोग रामचरितमानस अथवा रामायण सब जानते ही हैं। भगवान राम ने बाली को छिप करके मारा, मारा ना भाई, क्यों मारा, कमजोर थे, आधा बल चला जाता था, तो छिप के मारना कोई मर्दानगी थोड़ी थी भाई। उसने अपने तप के बल से बल प्राप्त किया था, यदि आप भी क्षत्रिय हो तो आओ सामने मुकाबला करो, या आप भी तप से बल प्राप्त करो, मेरा बल है तुम आधा ले लो, तुम भी हमसे ज्यादा तप प्राप्त करो। ये तो धोखा हुआ कि नहीं धोखा हुआ बताओ भाई। अरे कोई सो रहा हो छिप के बाहर बांध, कोई वीरता थोड़े है, क्यों लगता है, इसका एक बहुत गहरा रहस्य है, बहुत गहरा रहस्य है। बाली है भोग का प्रतीक है, किसका प्रतीक है, भोग का। इसलिए बाली के सामने बड़ा से बड़ा बलवान भी आवे तो उसका बल आधा हो जाता है, ये भोग की विशेषता होती है। भोग के सामने भोक्ता का बल होता नहीं होता भाई। भाई रावण जैसा वीर व्यक्ति जिसने तीनों लोगों को जीत लिया था, जब सीता के सामने जाता था तो क्या कहता था, मैं तुम्हारे चरणों का दास हूं, तू हमारे दिल की मल्लिका है, ऐसे सद बोलता ना। बड़ा से बड़ा पावरफुल भी किसी वेश्या के पास जाता है तो उसके चरणों का क्या बन जाता है, गुलाम बन जाता है। उसकी वह ताकत, उसकी वह पावर कहां गया? तो बाली किसका प्रतीक है? भोग का। तो भोग भगवान राम अपने इस अभिनय से सिखाना चाहते हैं कि भोग को भोग के सामने रह करके मारना चाहो तो बड़ा ही मुश्किल है। कि भाई नहीं मुश्किल है, आप बताओ। आप लोग सिद्ध हो सकते हैं लेकिन सही बताऊं बहुत मुश्किल है। इसमें कोई एक जनक हो सकता है, अपवाद एक होते हैं। जन सामान्य का जो नियम होता है ना, वह नियम नहीं हो सकता है। एक राम एक कृष्ण हो सकते हैं कि भोग में रह करके भोग से दूर, लेकिन जन सामान्य के लिए तो भोग के विषय इतने आकर्षित करने वाले होते हैं तो कहते ना ना करते करते हम उसी भोग में डूब जाते हैं। उस विषय से परे रहने की हम सोचे पाते ही नहीं है। इसलिए भोग से, क्योंकि गीता जी में है ना, ध्यायतो विषयान पुंस संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते काम कामात क्रोधो विजायते, क्रोधात भवत सम्मोह सम्मोहात स्मित विभ्रम स्मित भंसात बुद्धिनाशो अबुद्धिनाशात। अरे 24 घंटे विषय को देखते रहो ना, देखते रहो देखते रहो ना, तो देखते देखते भी उसको भोगने की इच्छा पैदा हो जाती है। आप लोग भले कहो मैं वही कर रहा हूं। अच्छे बताओ, हम लोग आजकल यही सब वेदांत में हम लोग सब कहते घर में रहते हुए सब कुछ हो जाएगा, चिंता मत करना। हम सब बोलते नहीं बोलते बताओ? और हम जो बोलते हैं हम इस पूछो, आप लोग कभी कभी ऐसा आप लोग नहीं कहते? ये आप सबकी महानता है, उदारता है। आपने कभी सुना होगा जब वो मर गई, बाली मर गया, तो तारा रोती ना रोती है? तारा रोती है बाली की पत्नी, तो उसमें राम उपदेश देते हैं तारा को कि तुम किसके लिए रो रही हो, शरीर के लिए अथवा आत्मा के लिए? यदि आत्मा के लिए रो रही हो तो आत्मा तो अजर अमर है, वह कभी मरता ही नहीं है। और शरीर के लिए रो रही हो तो शरीर तुम्हारे सामने पड़ा है, प्यार कर लो ना। तो ऐसा रामायण में बहुत उपदेश है, लंबा उपदेश है। तो दीना ज्ञान हरि लीनी माया, भगवान राम ने ज्ञान दिया और उनकी माया अज्ञान हर लिया और तारा क्या हो गई? शांत हो गई। वही ध्यान देना, राम जब लक्ष्मण बेहोश हो जाते हैं कहां, लंका में, तो राम रो रो के बुरा हाल। अब वहां तो ऐसा बोलते हैं, जो जनता हूं हम बंद बिछे हूं, पिता वचन मनते हूं नहीं हूं, ऐसा कुछ है। यदि मैं जानता कि वनवास के जाने के बाद मेरे भाई का मेरे साथ विक्षोभ होगा तो मैं बाप की बात मान करके जंगल आता ही नहीं। रो रो के हनुमान जी को भी परेशान कर दिया, जाओ रातों रात कहां ले जाओ, संजीवनी बूटी ले आओ, हमारे भरत को, ओ लक्ष्मण को जिंदा करो। तो कहीं तारा पहुंच जाती उसी समय राम के पास, राम से बोल देती, राम क्यों रो रहे हो, आपका भाई कौन था, शरीर था अथवा आत्मा थी? यदि शरीर था तो तुम्हारे सामने पड़ा हुआ है, अरे आत्मा है तो कभी मरती उठती तो है ही नहीं, वो निर्विकल्प है। ताप अपना रोना होना छोड़ो, आपने यही तो मैं उपदेश दिया। बोलो भाई, बोल सकती नहीं बोल सकती थी? लेकिन इन सबके बड़े रहस्य हैं। आप लोग बस कथा सुन लेते हो या बोलने वाले हैं ये भगवान की लीला है बोल देते हो, लेकिन वास्तव में इसके बहुत गहरे रहस्य हैं। ऐसे आप सोचो सब कुछ के साथ रहते हुए भी यदि हमारी ज्ञान निष्ठा प्रबल हो सकती थी तो बड़े बड़े राजा महाराजा ऋषभ देव को क्यों छोड़ना पड़ा घर, गौतम बुद्ध को क्यों छोड़ना पड़ा घर, बानप्रस्थ क्या अपने अनुकूल वह महल के बाहर कोई आश्रम नहीं बनवा सकते थे? अरे हम कहते भर्तृहरि को क्यों छोड़ना पड़ा? मेरे भाई भरत को क्यों छोड़ना पड़ा? राजा भरत का भी चक्रवर्ती सम्राट थे, इन सब लोगों ने क्या किया है? वो तो अपने अनुसार वातावरण तैयार कर सकते थे ना, लेकिन वो जानते थे विषयों के साथ रहते हुए हम विषयों से उपराम हो नहीं सकते हैं। हो सकता है वो कहानी भी सुन लिए होंगे, उस दिन मैंने कहानी बताई थी, किसकी कहानी? पांडु की कहानी। पांडु फंसी तो गए, बानप्रस्थ आश्रम में रहते हुए साप पाए हुए भी, माद्री के लाख मना करने पर भी अपने आप को रोके नहीं पाए। और वो वही विषय नहीं, और भी विषय लेना, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, हम कहीं न कहीं स्वाद में फंस जाते हैं, कहीं रूप में फंस जाते हैं। विश्वामित्र मेनका में रूप में फंसे, कहीं शब्द में हम फंस जाते हैं। तो इन विषयों के साथ रह करके विषयों को जीतना बहुत ही, इसलिए भगवान हमें शिक्षा देते हैं, यदि तुम्हें अपनी भोग की वृत्ति को मारना है ना, तो भोग्य पदार्थ से दूर रह करके ही भोग्य वृत्ति को मार सकते हो, उसके साथ रह करके मारना बहुत ही कठिन है, ये शिक्षा दे रहे हैं। क्या मारना है? भोग्य वृत्ति को मारना है, तो कहां से दूर रह करके? भोग्य पदार्थ के सामने रह करके भोग्य वृत्ति को मारना थोड़ा सा क्या है, कठिन है, उससे दूर रह करके ही उस वृत्ति को मार लेना। अब मारने के बाद, जीतने के बाद फिर रहोगे भी तो कोई फर्क है, लेकिन एक बात तो वहां से दूर रहना पड़ेगा। ये बात समझ आ रही है? क्यों छिपके मारा, क्यों दूर रह के मारा? दूसरी घटनाएं हैं। कहो महाराज जी, भोग का सामना तो कहीं भी जाओगे करना पड़ेगा ही पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा भाई, कहां भाग के जाओगे? हरिद्वार जाओगे, वहां नहीं क्या भोग की सामग्रियां? बाबाओं को तो और खाने को माल मिलता है, आप लोग भी रोटी दाल खाते होंगे, हम लोग तो चार चार सब्जियां मिल जाती है, पांच पांच सब्जियों की कटोरियां सज जाती है, तो वहां भी रस आ सकता है। तो वहां बताया, यदि भोग का सामना करना पड़े तो सुग्रीव बन के जाना। क्या बनना है भाई? जब सुग्रीव लगने के लिए गया, ये रहस्य है रामायण के थोड़ा, तो राम कहे कि मैं पहचान नहीं पाया, दोनों भाइयों की एक शकल थी, तो मैं सोचा कि तीर मारूं बाली पे, कहीं लग जाए सुग्रीव पर, तो मेरे को मित्र को मारने हत्या का पाप लगेगा। अरे भगवान ऐसी गलती कर सकते हैं क्या, नहीं पहचान पावे? अरे मौत की देवी भी आ जाए, वो भी दो एक शकल वाले हुए, तो जिसको मारना होगा उसी को ले जाएगी, तो फिर भगवान की भगवत्ता ही कहां रह जाएगी, जो भगवान पहचान न पावे कौन बाली कौन सुग्रीव। ये भगवान हम सबको शिक्षा देने के लिए समझाते हैं, यदि तुम्हें भोग से मुकाबला करना पड़े ना, तो चंदन लगा के चले जाना, सही बता रहा हूं, गले में मोती माला पहन के जाना, रुद्राक्ष माला, ये थोड़ा सा लाल कपड़ा पहन के चले जाना, धोती उती पहन के चले जाना, सही बता, भोग के साथ रह करके भी उस भोग को तुम भोग नहीं सकते हो, वह भोग तुम्हारे ऊपर हावी नहीं हो सकता है, उस भोग को तुम जीत लोगे। जिसे मान लो, छोटी सी बात, अभी मैं कथा सुना रहा हूं, यहां से भी घूम वहां चला जाऊं, कहां एक कपड़ा पहन करके रास्ते में आऊं, आइसक्रीम खाते हुए आऊं, इधर से आप कथा सुनते हुए जाओ, मतलब खा सकता हूं क्या? भले मुझे आइसक्रीम खाने की इच्छा है, लालच है, इन खा सकता हूं क्या? इन कपड़ों में नहीं है, आप टाई भी लगा लो, पैंट लगा लो, सही बताओ ना, इन कपड़ों को पहनकर हम बहुत बीचों पे, एक बार जैसे गोवा हमारा एक मित्र का आश्रम है, तो मैं गया, तो गया गोवा, तो किसी से बताया कि मैं 10 दिन गोवा रहा, मैं आप गोवा क्या कर रहे थे? सीधे हम कहा गोवा हम नहीं जा सकते थे क्या? नहीं नहीं, गोवा आपके लायक जगह नहीं है। तो इन कपड़ों को पहन करके हम गोवा में नहीं जा नहीं जाएंगे, बताएंगे तो बता भी नहीं सकते। अब कुछ एरिया है तीन कपड़ों को पहन के वहां वो जा भी नहीं सकते। आप उधर क्या कर रहे थे? तो ये कपड़े, ये चंदन, ये माला, हम अच्छी माला पहन गाली देवें दे सकते हैं? अरे महाराज जी, थोड़ा सा चंदन का ध्यान तो रखो। तो आपको विषयों विकारों से बचाने का एक बहुत बड़ा क्या है, एक साधन है। क्या बन के जाना? सुग्रीव बन के जाना। सुग्रीव बनने का मतलब क्या हुआ बोलो भाई? अरे आप श्वेत कपड़े पहन लो, लाल कपड़े पहन लो, कोई व्यक्ति आपके प्रति गलत भावना, दूसरे कपड़े में आपके प्रति गलत भावना का आरोपण भी कर सकता है। लेकिन यदि आप लाल कपड़े पहने हो ना, तो आपके प्रति उसके मन में गलत भावना भी होगी तो भी आपसे कभी बोलने की हिम्मत है? अरे आपको भी बोलने की हिम्मत नहीं होगी, सच बताओ। अरे महाराज आप एक बताए ना, हम लोग तो खाना खाते हैं तो खाना खाते हुए भी मांगने की हिम्मत नहीं होती, नमक कम है कि ज्यादा है, लहसुन प्याज मांगो। अरे महाराज आप लहसुन प्याज खाते हो क्या? ठीक है कई पंजाब में महात्मा खाते हैं, लेकिन यहां मांगो खाओ तो महाराज लहसुन प्याज खाते हैं क्या? ये भी नहीं मांगा जा सकता। अब पंजाब में तो और माताएं बड़ी तेज होती हैं, एक महात्मा ने तो नमक मांग लिया तो माई तो पीछे पड़ गई। तुम खाने के लिए महात्मा बना है, स्वाद के लिए महात्मा बना हुआ है? तो कई लोग ऐसे बोल भी देते हैं, तो जो मिल जाए चुपचाप क्या करना, खा लेना, बोलना नहीं, बोले तो फंसे। लेकिन किस कपड़े में? और उस कपड़े में कुछ भी मांगो, वो भी मांग लो। अरे ट्रेन में जाते महाराज, आप तो वेज वाले ही होंगे, आपसे क्या पूछना? सबसे पूछता वेज और नॉन वेज, पूछते नहीं पूछते भाई? लेकिन हमसे कभी चुवाई जाती क्या? आप तो वेज वाले ही होंगे पक्का। तो सुग्रीव बन के जाना आया। तीसरा, अब वहां पहुंचो लंका में, ये तरीके बता रहे हैं आपको जीतने के। लंका में पहुंचो, ये लंका कहां है? हाँ, ये नहीं, ये संसारी लंका है, सोने की लंका कौन है? चमक धमक की, चमक धमक रूपी संसार का नाम ही क्या है भाई? संसार आपको खींच नहीं रहा का? जैसे सोने की चमक आपको क्या करती है, खींचती नहीं खींचती, ऐसे संसार में भोगों की चमक है आपको अपनी तरफ क्या करती है, खींचती नहीं खींचती। तो संसार ही सबसे बड़ी क्या है, लंका है। इस लंका में घुसो तो राम घुसे तो सीता की प्राप्ति के लिए, लेकिन लक्ष्मण को लेकर घुसे हैं। लक्ष्मण है वैराग्य, लक्ष्मण कौन है? लेकिन बड़ी मुश्किल है भाई, इस लंका में ना ये वैराग्य कब शिथिल पड़ जाए पता नहीं चलता। मरने की बात छोड़ दो, इस चमक धमक को देख करके हमारा वैराग्य क्या हो जाता है, शिथिल ढीला हो जाता है, बेहोश हो जाता है। नहीं बेहोश होता, ऑफर आपको मिल जाए तो आपका वैराग्य रहता है कि गायब? तो उस समय राम कहते हैं कि मेरे भाई यदि लंका को जीतना है, लंका माने संसार को जीतना है, तो इस सोए हुए वैराग्य को जगाओ, रो व्याकुल हो कि जिस काल में मैंने घर छोड़ा था उसमें तेरा वैराग्य कितना तेज था, मां बाप भाई बहन नौकरी घर की संपत्ति, जिसके पास जो संपत्ति होगी 10-20 पांच बीघा जमीन होगी कि नहीं होगी, करोड़ों की संपत्ति छोड़ कर आया, आज तेरे को क्या हो गया कि 100 रुपए के पीछे, 1000 रुपए के पीछे किसी की चाटुकारिता कर रहा है, किसी के पीछे पीछे गुलाम की तरह घूम रहा है, तेरे भीतर का वह वैराग्य कहां गायब हुआ? तो भीतर के उस सोए हुए वैराग्य को विचार रूपी संजीवनी दे दे करके जगाना पड़ेगा, तभी इस संसार रूपी लंका को जीत सकते हो। नहीं तो संसार ने तो अच्छे अच्छे को क्या किया है, खलास कर दिया है, आपकी भाषा में सिकंदर आए, कितने कितने आए, सब कुछ। तब सोचना कहां तक पहुंचना हमें। तो क्या है कि विषय वही कथम मुने मौन में ही आचरंती, अभ्यास और वैराग्य के बल से ही इंद्रियों के संयम के द्वारा इस मौन का आचरण साधक लोग, ओ संन्यास मुनि लोग, मननशील लोग, विचारशील लोग किया करते हैं। ऐसा नहीं, हम लोगों के भी मन में कभी कभी खुराफात आती होगी, कभी कभी विचार आती होगी। हमें भी कल से अच्छा लग रहा था यार, इन लोग बताए ना आदित्य योगी बन गए, वो सीएम बन गया, खुशी की बात है ना भाई, देखो सब खुश है। लेकिन फिर विचार किया, ये भी लगा कि 24 साल में संन्यास लिया, 44 साल में सीएम बन गया, केवल 20 साल ही तो माँ बाबा बने हुए, हमें यार 20-25 साल हो गए, आज वहीं का वहीं हूं। कभी कभी लगता है, फिर हीन भावना सी आई, लगता उनकी बहुत भारी क्या हो गई, उपलब्धि हो गई। फिर विचार किया, सच बता विचार किया, मैंने भी विचार किया, हमका पहले के लोग अभी बताए, आते ही बताया, पहले के लोग बगैर राज पाठ छोड़ करके संन्यास लेते थे। पहले लोग क्या करते थे, ऋषभदेव थे, भर्तृहरि थे, गौतम बुद्ध थे, क्या किए थे, राज पाठ छोड़कर कहां गए थे, और आज हम संन्यास से कहां आ रहे हैं। तो सदगति है कि कौन सी गति माना जाए, तरक्की है, उन्नति है का उन्नति है, विचार करें, आध्यात्मिक उन्नति है, ठीक है लौकिक उन्नति हो सकती है, हो सकती है लौकिक उन्नति भी, क्या है यहां तो शास्त्र में बताया गया स्वर्ग भी पा जाओ ने, स्वर्ग का भी साम्राज्य मिल जाए ने, तो अध्यात्म वो भी कहते पाप का ही फल है, क्योंकि छिंगड़े पुण्य मृत्यु के विसंती, वह सुख सुख ही नहीं है, दुख सुख से हमें च्युत होना पड़े, नीचे गिरना पड़ा। और ये पद तो ऐसा है कि 4 दिन है, ये भी गारंटी नहीं कि हम 5 साल पूरा कर पाएंगे, कि 5 साल पूरा, कोई ऐसा विप्लव आता है कि व्यक्ति 2 साल में ही गद्दी छोड़ करके हटना पड़ता है, तो उस गद्दी में, उस सुख में तो हर पल क्या है, डर है, भय है, और एक बार उस गद्दी छूट के बाद फिर दूसरा सुख सुख दिखेगा ही नहीं, क्योंकि एक बार ऊंची का सुख, ऊंची का ऐश्वर्य ले लेवे ना, तो फिर छोटे मोटा ऐश्वर्य उसको सुख देता ही नहीं है। चलो जो भी है, यहां हम अपने विषय में आते हैं, तो इस मौन को वह प्राप्त कर लेता है। अच्छा बताओ भाई, जिस व्यक्तियों ने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद आदि का अध्ययन किया है, खूब किया है, जैसे हम लोग खूब सत्संग सुने हैं, लेकिन साथ साथ है, दूसरा काम भी करते हैं, पाप आदि कर्म भी करते जाते हैं, तो क्या पाप कर्मों से लेपायमान होंगे अथवा पाप कर्मों से लेपायमान नहीं होंगे, क्या होगा? तब सनत कुमार जी ने बताया, क्योंकि ऐसे कई परंपरा वाले लोग हैं, पहले जब गुरु दीक्षा देते थे ना, तो गुरु दीक्षा देने के पहले शराब पीना छोड़ दो, मांस खाना छोड़ दो, झूठ बोलना छोड़ दो, जो आपके भीतर दुर्गुण थे ना, उन सारे दुर्गुणों को क्या करते थे, छोड़वाते थे, फिर इनको मार्ग में लाते थे। आजकल क्या हो गया है, जो कुछ कर रहे हो करते रहो, तुम एक बार मेरे शिष्य बन जाओ, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, ऐसा कई परंपरा वाले लोग बोलते हैं। यहां सनत कुमार जी सीधे कहते, न एनम, एनम माने ऐसे व्यक्ति को, कैसे व्यक्ति को, पापान कुरुवन, जो पाप करता हुआ, और ऋग वेद आदि नधीते, ऋग यजुर् साम आदि वेदों का अध्ययन कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को सामानी माने साम वेद, ऋचो, ऋग्वेद वा अपि यजुंसी अथवा यजुर्वेद, न पापात कर्मण प्रायन्ते, पाप कर्मों से इनकी रक्षा करते ही नहीं है। कुछ तो कहते होंगे, न ते मिथ्या न ब्रवी में हम, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलता, सत्य बोलता हूं। और सही बताऊं, ये सत्य क्यों नहीं बोलेंगे, सनत कुमार जी को उनसे कुछ लेना देना होवे धृतराष्ट्र से, तो उनकी थोड़ी सी मुंह की बोले उनके अनुसार बोले, क्योंकि उनके राज पुरोहित तो है नहीं, राज पुरोहित उनके अनुसार थोड़ा बहुत उनके शादियों में चला जाएगा, उनके ब्याह में चला जाएगा, नाच भी लेगा, उनके सुख दुख में खड़ा भी रहेगा। वशिष्ठ जी तो बोल सकते हैं ना राम के लिए, कुछ उनकी तरफ बोल सकते हैं, लेकिन सनत कुमार जैसे निष्प्रिय है, जिससे जिसको किसी से कुछ लेना है ही नहीं, वह व्यक्ति यदि बोलेगा तो दो टूक शब्द बोलेगा, न ते मिथ्या ब्रवी में हम तुमसे मिथ्या बात नहीं करते हैं, हम सत्य ही बोलते हैं कि तुम अपने आचरण को जब तक ठीक नहीं करोगे, तुम्हारे आचरण में जब तक मौन भाव नहीं आएगा, तब तक दुनिया के किसी कर्म के फल से तुम्हें मुक्ति मिलने वाली है ही नहीं। जो भी कर्म करोगे मैं भाव से युक्त होकर के, उन सारे कर्मों का फल तुम्हें भोगना पड़ेगा ही पड़ेगा, कोई तुम्हें बचा नहीं सकता, मैं आपसे झूठ बोलता ही नहीं। कल इस पे चर्चा एक कथा के माध्यम से मैंने किया था, याद है ना? कौन सी कथा? भस्मासुर। कौन है भस्मासुर बोलो भाई? हाँ, इस शरीर में अभिमान करने वाला ही कौन है? भस्मासुर। मैंने बताया ज्ञान मिला भस्मासुर को, ज्ञान मिला। किससे ज्ञान मिला? शिव से ज्ञान मिला, लेकिन उस ज्ञान का उपयोग उसने कहाँ किया? पार्वती को पाने के लिए किया। पार्वती माने कौन हुआ? माया, संसार। हमें भी ज्ञान मिला, लेकिन इस ज्ञान का उपयोग हम कहाँ कर रहे हैं? संसार को पाने के लिए, धंधेबाजी, संसार को पाने के लिए। तो कहा संसार को पाने के लिए भी हमने ज्ञान का उपयोग किया, यही हमारी आत्महत्या है, यही शिव की हत्या है। यही किसकी हत्या है? शिव की हत्या है। शिव की चर्चा तो हो रही है, लेकिन किसके लिए हो रही है? संसार के लिए। तो उसमें नारायण मिलते हैं, नारायण एक हमारे दूसरे गुरु हैं। वो कहते बेटा, जिस ज्ञान का उपयोग तू संसार को पाने में करता है, उस ज्ञान का उपयोग किसके ऊपर कर ले? अपने ऊपर कर ले, तेरा कल्याण हो जाएगा। अपने ऊपर का, उस ब्रह्म विद्या का अपने ऊपर इस्तेमाल किया तो उसका शरीर का मैं भाव समाप्त हो गया। मैं भाव समाप्त होना ही जलना होगा, और फिर उसकी जीवन की सारी दौड़ ही, क्योंकि जब तक मैं भाव है तब तक संसार में दौड़ है, और मैं भाव के समाप्त होते ही संसार की दौड़ समाप्त हो जाएगी। तो भाई ऐसे व्यक्ति के लिए वेद क्या करते हैं, इसके लिए पांचवां श्लोक है। न छंदांसि वृजिनम तारयन्ति मायाविनम्। कैसे बोले हैं? माया वर्तमानम न छंदांसि वृजिनम तारयन्ति मायाविनम् मायया वर्तमानम्। छंदांस एनम प्रजहंत काले नीडम शकुंता इव जात पक्षा। छंदांस माने वेदा है, छंद माने कौन हुआ? वेद। वेद माने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। एनम, एनम माने इसको, इसको माने किसको? इस मायाविनम, इस मायावी को। मायावी माने कौन हुआ? बोलो भाई। पाप कारिणम धर्म ध्वजित्वम, जो धर्म ध्वजी है, धर्म का झंडा तो लगाया है लेकिन भीतर क्या है? छद्म है, माया है। जैसे रावण साधु के भेष में गया लेकिन दृष्टि कहां है? सीता पे। काल नेमी साधु के भेष में गया, धर्म ध्वजी, आश्रम में धर्म का झंडा बहुत लगा है, नियत हनुमान जी को मारने की बनी है, तो ऐसा माया वर्तमानम जो मिथ्याचारिण है, माया में झूठ में रहता है, मिथ्या व्यवहार करता है, मिथ्या आचरण किया करता है, तो ऐसे व्यक्ति को न तारयंती छंदांसी, वेद उसकी रक्षा करने में समर्थ होते ही नहीं है। बेचारा वेद भी क्या करेगा, इसे वेद ही मौन हो जाते हैं। तो वेद क्या करते हैं, किम करिष्यंती, वेद उसके लिए क्या करते हैं, करे यथा शकुंता, जिस प्रकार से शकुंता माने पक्षी, जात पक्ष है, ऐसे पक्षी जिसके पंख निकल चुके हैं, निडम माने अपने घोंसले को, अपने आश्रय को छोड़ देते हैं, चले जाते हैं, उसी प्रकार से यह वेद भी मृत्यु के काल में उस आश्रयभूत जीव का साथ छोड़ करके चले जाते हैं, और जीव अकेला ही पाप पुण्य को भोगता रहता है। इसलिए मेरे भाई, इन वेद का स्वाध्याय चिंतन करते हुए इतना ध्यान दो, हमारे भीतर इसकी निष्ठा कितनी बड़ी है। हमारा शरीर का मैं भाव और शरीर के संबंधियों के प्रति हमारा मम भाव, कि जो गांठ थी वह गांठ कितनी मात्रा में ढीली पड़ी है। हर पल इंस्ट्रक्शन करते रहो, हर पल निरीक्षण करते रहो, और जिस क्षण पूरी तरह से गांठें खुल जाएंगी, उसी क्षण हम उस ब्रह्म भाव में स्थित हो सकते हैं। अन्यथा तो श्रुति का नियम है, यम यम वाप स्मरण भावम त्यजंती कलेवरम, मृत्यु के काल में जिस जिस भाव का आप स्मरण करोगे ना, उसी उसी भाव के अनुरूप हमें शरीर की प्राप्ति हो जाती है। अरे संसार वाले, सही बताऊं, जीने तो देते नहीं और आपको मरने भी नहीं देते हैं। किसान तीस मरने देते हैं, संसार नहीं मरने देते हैं। आप चलपैया पे पकड़े हो, लेटे हो, आप जानते हैं, और फिर भी आएगी कोई बेटी, पापा पहचान गए ना, मेरा नामे है, आंखें इतनी भरी भरी करके आएगी, रोएगी, मेरी बात सुन रहे हो ना, आज ही आई हूं मैं लंदन से। अब उसके मन में उसका चिंतन न भी चल रहा होगा, तो मृत्यु के समय किसका चिंतन करा रहे हैं, उस बेटी का, उस धन का, वकील आ गया है, जल्दी पापा दस्तखत कर दो। अब क्या होगा, अब उसी का चिंतन करते हुए यदि शरीर छोड़ेगा, मतलब उसी बेटी के यहां नाती उती बन के पैदा हो जाएगा, और कुछ नहीं होगा। इसलिए हमें सुना है, शायद पता नहीं, ऐसा साउथ में ऐसा करते हैं, मरणासन्न व्यक्ति को थोड़ा अकेले छोड़ देते, किसी ने हमें बताया, साउथ है ना, साउथ में मरणासन्न व्यक्ति को अकेले छोड़ देते हैं। हाँ, कुछ भी करे, या तस्वीरें लगा दो भगवान भगवान की, अथवा चिंतन करो, अरे सारी जिंदगी पहचाना है। अच्छा, कई मरने वाले उधर बहुत बुरा हाल है, इनकी तरफ यूपी तरफ, मम्मी कुछ खाने की इच्छा है, अब मरने वाला क्या खाने की इच्छा करे बताओ, उसकी खाने की इच्छा न हो भी सोचे क्या खाऊं, कब खाया था, क्या नहीं खाया था, सोचेगा बेचारा क्या खाएं, क्या मांग लूं, क्या मांग लूं, मन में आया रसगुल, मर गया, और रसगुल्ले में फिर हलवाई का जन्म ले लेगा, पक्का है, एक हलवाई का जन्म पक्का कर लिया, उसने ठेका लगा लिया। अरे कम से कम लोगों ने जिंदा नहीं रहने दिया तो कम से कम शांति से। इसलिए महात्मा लोग ने जो घर बार छोड़ के जाते थे ना जंगल में, उसमें राजा लोग मरने के लिए जाते थे, कि जिंदा रहने के लिए राजमहल कम था क्या, ये जानते थे राजमहल वाले जिंदा रहने नहीं देंगे, इसलिए मरने के लिए शांति से मर तो सकूं, इसलिए कहां जाते थे, आश्रमों में, जंगलों में जाते थे, वहां अपना मैं और मेरा ब्रह्म, निर्विकल ब्रह्म के अलावा दूसरी कोई सत्ता रहती ही नहीं थी। चलो भाई, आगे बताया, उस पर कल चर्चा करेंगे, कि महाराज यदि वेद आपकी रक्षा करने में समर्थ नहीं होते हैं, तो बचपन से लेकर के लोग ऐसा क्यों बोलते हैं, वेद पढ़ो, वेद पढ़ो, एक करो, एक करो, एक करो। अथ कस्मात प्रलापोयम, किस कारण से यह प्रलाप है, ब्राह्मणानाम स्नान अनादिकाल से आ रहा है परंपरा, वेदो नित्य विधीयताम, ये अनुष्ठान करो, ये अनुष्ठान करो, ये फायदा होगा, ये फायदा होगा, कुछ फायदे नहीं हो रहा है तो क्यों करना चाहिए, इस पर भी चर्चा हम लोग, क्योंकि सब संशय के प्रश्न है। आप ध्यान देना, हम उपासना करते हैं तो उससे हमें कुछ फल मिलता है कि नहीं मिलता है, अब फल मिलता है तो किस रूप में कैसे मिलता है, ये सब चिंतन करना है। तो भाई कल आना ही पड़ेगा आप लोग, हरिओम तत्स।